In the concluding days of his mortal ministry, Jesus gave his
disciples जिसे उसने नई आज्ञा कहा था। तीन बार दोहराई गई है आज्ञा, सरल किंतु कठिन थी। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखने की शिक्षा उद्धारकर्ता की सेविकाई में बहुत महत्वपूर्ण रही थी। दूसरी महान आज्ञा थी, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यीशु ने यह भी सिखाया था, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, लेकिन दूसरों से ऐसा प्रेम रखना जैसा उसने अपने लोगों से किया था, उसके शिष्य और हमारे लिए एक विशिष्ट चुनौती है। असल में अध्यक्ष मॉनसन ने हमें पिछले अप्रैल में सिखाया था, प्रेम सुसमाचार का मुख्य सार है और यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है। उसका जीवन प्रेम की विरासत थी। क्यों एक दूसरे के लिए मसीह के समान प्रेम रखना इतना कठिन है? यह इसलिए कठिन है क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारे धर्म और मूल्य और अनुबंधों के कर्तव्यों में सहभागी नहीं होते हैं। अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व अपनी महान मध्यस्थता प्रार्थना में यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना की थी, मैंने आपका वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। तब उन्होंने पिता से याचना की थी, मैं ये विनती नहीं करता कि आप उन्हें संसार से उठा लें, परंतु ये कि आप उन्हें उस बुराई से बचाए रखें। हमें संसार में रहना है लेकिन संसार जैसा नहीं बनना है। हमें संसार में अवश्य रहना चाहिए क्योंकि जैसा यीशु ने एक दृष्टांत में सिखाया था, उसका राज्य खमीर के समान है जिसका उद्देश्य अपने प्रभाव से सबों को ऊपर उठाना है। उसके अनुयायी यह प्रभाव नहीं डाल सकते यदि वे केवल उन साथ संबंध रखें जो उनके धर्मों और प्रार्थनाओं को मानते हैं। लेकिन उद्धारकर्ता ने यह भी सिखाया था, यदि हम उससे प्रेम रखते हैं जो हम उसकी आज्ञा को पालन करेंगे। अलग अलग धर्मों और प्रथाओं के लोगों के बीच रहते हुए आज्ञाओं का पालन करने के बारे में सुसमाचार में बहुत शिक्षा है। मतभेद के बारे में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब पुनर्जीवित मसीह ने देखा निफाई 32 में की रीति के विषय में बहस कर रहे थे, उसने इस रीति के विषय में स्पष्ट निर्देशन दिए था, तब उसने ये महान नियम सिखाया था, तुम्हारे बीच कोई मतभेद नहीं होगा जैसा कि अब तक होता रहा है, ना ही मेरे सिद्धांत की बातों से संबंधित तुम्हारे बीच कोई मतभेद होगा जैसा कि अब तक होता रहा है, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं जिसके पास मतभेद की आत्मा है वह मेरा नहीं है परंतु शैतान का है, जो कि सारे मतभेदों का पिता है, और वह लोगों के हृदय को क्रोध में एक दूसरे के मतभेद करने के लिए भड़काता है। देखो, एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध में लोगों के हृदय को भड़काना मेरा सिद्धांत नहीं है, परंतु मेरा सिद्धांत इस प्रकार की बातों को दूर करना है। उद्धारकर्ता ने अपनी चेतावनी को मतभेद रखने वालों तक की सीमित नहीं रखा जो बपतिस्मे के बारे में आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। उसने किसी के द्वारा भी मतभेद रखने के लिए मना किया था, वह भी जो आज्ञाओं का पालन करते थे। मतभेद करके लोगों के हृदय को गुस्से से उत्तेजित न करें, शैतान मतभेद का जन्मदाता है, उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार है। इसी प्रकार बाइबल सिखाती है कि बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। आरंभिक पितरों ने सिखाया था कि हमें उन बातों का पालन करना चाहिए जो मेल मिलाप कराती हैं और सच्चाई में प्रेम से बोले, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। वर्तमान प्रकटीकरण में प्रभु ने आज्ञा दी थी कि पुनर्स्थापित सुसमाचार की घोषणा प्रत्येक मनुष्य को अपने पड़ोसी से कोमलता और विनम्रता से करनी चाहिए, बहुत ही दीनता से, बुराई करने वालों के विरुद्ध बुराई करके नहीं। जब हम दीन होते होने और मतभेद से दूर होने का प्रयत्न करते हैं, हमें उन सच्चाइयों के प्रति अपनी वचनबद्धता से समझौता या उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं। हमें अपने स्तर या मूल्यों को नहीं गिराना चाहिए। यीशु मसीह का सुसमाचार और जो अनुबंध हमने बनाए हैं, वे हमें सत्य और असत्य के बीच अनंत युद्ध में एक योद्धा की भूमिका प्रदान करते हैं। इस युद्ध में कोई बीच भी की अवस्था नहीं है। उद्धारकर्ता ने मार्ग दिखाया था जब उनके विरोधियों ने उनके सामने एक स्त्री को लेकर लाए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। जब अपने समय के पापों से शर्मिंदा होकर दोष लगाने वाले चले गए और यीशु को उस स्त्री के साथ अकेला छोड़ दिया गया, उसने दया दिखाते हुए उस समय उस पर दोष लगाने से मना कर दिया, लेकिन उससे दृढ़ता से उसे निर्देश दिया फिर पाप ना करना। प्रेम भरी दया की जरूरत होती है, लेकिन मसीह के अनुयायी स्वामी के समान सच्चाई में मजबूत रहेंगे। उद्धारकर्ता के समान उसके अनुयायी कभी कभी पापपूर्ण व्यवहार का समान सामना करते हैं, और आजकल कभी कभी इन्हें कट्टर या सनकी कहा जाता है। जब वे अपनी समझ के अनुसार सही और गलत की घोषणा करते हैं, बहुत से सांसारिक मूल्य और प्रथाएं अंतिम दिनों के संतों के लिए इसी प्रकार चुनौतियों उत्पन्न करती हैं। आज इनमें से बहुत एक प्रमुख विचारधारा है संयुक्त राज्य अमेरिका और संसार के बहुत से देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देना। हम ऐसा लोगों के बीच में रहते हैं जो विवाह करने में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। कुछ बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं करते, कुछ अश्लील चित्रों या घातक मादक पदार्थों पर पाबंदी लगाने के विरुद्ध हैं। अन्य उदाहरण, बहुत से विश्वासी जानते हैं गैर विश्वासी पत्नी या पति या परिवार के सदस्य के साथ रहना या गैर विश्वासी सहकर्मियों या अन्य के साथ संबंध रखना। प्रभु के समर्पित स्थानों जैसे मंदिरों, आराधनालयों और हमारे स्वयं के घरों में हमें सच्चाई और आज्ञा को स्पष्ट और पूर्ण रूप से सिखाना चाहिए, जैसा हम उन्हें उद्धार के योजना से जानते हैं जो पुनर्स्थापित सुसमाचार में प्रकट की गई है। ऐसा करने के अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों में बोलने की और धर्म की स्वतंत्रता संवैधानिक गारंटी द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ गोपनीयता का सम्मान उन देशों में भी किया जाता है जहां औपचारिक संवैधानिक गारंटी नहीं है। सार्वजनिक रूप में जो धर्मी लोग रहते हैं और करते हैं, उसमें दूसरों के विचार शामिल होते हैं। धर्म का स्वतंत्र होना पालन करने में बहुत से सार्वजनिक कार्यकलाप शामिल होते हैं, लेकिन ये दूसरों के धर्मों और प्रार्थनाओं को समायोजित करने के लिए आवश्यक योग्यता के अधीन होता है। कानून ऐसा व्यवहार को निषेध करता है जो सामान्य रूप से गलत या अस्वीकार्य है, जैसे यौन शोषण और हिंसा या अन्य आतंकवादी गतिविधि, बेशक उग्रवादियों द्वारा ऐसा धर्म के नाम पर किया जाता। कम दुखदायी व्यवहार बेशक कुछ धर्मियों को स्वीकार न हो को सहन करना पड़ता यदि इसे लोगों के मताधिकार द्वारा वैध ठहराया जाता, जैसा मार्मन की पुस्तक में भविष्यवक्ता ने कहा था। सार्वजनिक विषय पर बोलते हुए हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखने और मतभेद से बचने की सुसमाचार शिक्षाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मसीह के अनुयायी और शिष्टाचार का उदाहरण बनना चाहिए। हमें सब लोगों से प्रेम करना, अच्छा सुनने वाला और उनकी धर्म निष्ठा का आदर करना चाहिए। यद्यपि हम असहमत हों, फिर भी हमें विवाद नहीं करना चाहिए। विवादग्रस्त विषयों पर हमारे दृष्टिकोण और विचार मतभेद पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण को समझाने और अनुकरण करने और दूसरों को प्रभावित करने में समझदार होना चाहिए। ऐसा करते हुए हम निवेदन करते हैं कि दूसरों को हमारे निष्ठापूर्ण विश्वास और स्वतंत्रता से धर्म का पालन किए जाने के द्वारा अपमानित नहीं होना चाहिए। हम सभी को उद्धारकर्ता के महत्वपूर्ण आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जब लोकप्रिय नीतियां और विचारधारा हमारे दृष्टिकोणों के विरुद्ध हो, तो हमें नकारात्मक परिणामों को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रतिद्वंदियों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी सूरत में हमें सभी के प्रति अच्छी भावना रखने वाला होना चाहिए। जाति, नस्ल, धार्मिक विश्वास या अविश्वास और यौन मतभेद पर आधारित अत्याचार सहित किसी प्रकार के अत्याचार को अस्वीकार करना। मैं सामान्य नियमों के बारे में बोल चुका हूँ, अब मैं उन नियमों के बारे में बता रहा हूँ जो विभिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं, जिनमें उद्धारकर्ता की शिक्षाओं को अधिक विश्वसनीय रूप से पालन किया जाना चाहिए। मैं उन बातों से आरंभ करता हूँ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने खेलकूद के दौरान सीखते हैं। बहुत बार यहाँ यूटा में गैर सदस्य हमारे कुछ सदस्यों द्वारा अपमानित किए जाते हैं और उन्हें अलग समझा जाता है, जो अपने बच्चों को अन्य धर्म के बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। निश्चित रूप से हम बिना उनसे दूरी बनाए या उनके प्रति अनादर दिखाए जो हमसे अलग है, हम अपने बच्चों को व्यवहार के मूल्य और स्तरों को सिखा सकते हैं। गिरजे के विद्यालय में बहुत से शिक्षक उस व्यवहार से दुखी हैं जो कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं, इसमें एलडीएस बच्चे भी शामिल हैं। एक दूसरे से प्रेम रखने की आज्ञा में निश्चित रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों से प्रेम रखना और आदर करना शामिल है, और यह किसी भी जाति, संस्कृति या आर्थिक समूह तक सीमित नहीं है। हम सभी युवाओं को दूसरों को तंग करने, अपमान करने या गलत भाषा बोलने और ऐसा मजाक करने से बचने की चुनौती देते हैं, जिसे जानबूझकर दूसरों को दर्द पहुंचाना, ये सब बातें एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए उद्धारकर्ता की आज्ञा का उल्लंघन है। उद्धारकर्ता ने सिखाया था कि मतभेद शैतान का औजार है। यह निश्चित रूप से आजकल की राजनीति की कुछ भाषा और प्रथाओं के विरुद्ध शिक्षा देता है। ऐसा लोगों और नीतियों के साथ रहना जो कि आपसे मतभेद रखते हैं, राजनीति का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन नीतिगत के मतभेद में व्यक्तिगत आक्रमण नहीं होना चाहिए, जो कि सरकार की प्रक्रिया में बाधा डालता और सहयोगियों को दंडित करता है। हम सभी को घृणित बातचीत से दूर रहना चाहिए और विचारों में मतभेद होने पर शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। विवाद दूर करने और मतभेदों का आदर करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे घर और पारिवारिक संबंध है। मतभेद अवश्य ही होते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। जहां तक बड़े मतभेदों का संबंध है, मान लो परिवार का एक सदस्य बिना विवाह के किसी के साथ संबंध रखता है, इससे दो महत्वपूर्ण मूल्यों में मतभेद उत्पन्न होता है, परिवार के सदस्य के प्रति हमारे प्रेम और आज्ञाओं के प्रति हमारे वचनबद्धता में। उद्धारकर्ता के उदाहरण का पालन करते हुए हम प्रेम भरी दया दिखा सकते हैं और उन कार्यों का त्याग करते हुए सच्चाई से दृढ़ रहते हैं जो उसे आगे बढ़ाते या लगता अनदेखा करते हैं, जैसा हम जानते हैं किस गलत है। मैं पारिवारिक संबंध के एक अन्य उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ। 10 साल पहले मिडवेस्ट में एक स्टेट कॉन्फ्रेंस में मुझे एक बहन मिली थी, जिसने मुझे बताया कि उसके गैर सदस्य पति उनके साथ 12 साल से गिरजे आ रहे थे, लेकिन कभी गिरजे सदस्य नहीं बने। उसे क्या करना चाहिए, उसने पूछा था। मैंने सलाह दी कि वह सभी कामों को सही तरह से करती रहे और अपने पति के साथ धैर्य रखे और विनम्र बनी रहे। लगभग एक महीने बाद उसने मुझे यह लिखा। मैं सोचती थी कि 12 साल दर्शाते हैं कि मैं कितनी धैर्यवान थी, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या मैं इसके बारे में बहुत विनम्र थी। इसलिए मैंने एक महीने इस पर सचमुच में बहुत परिश्रम किया और मेरे पति का 32वां हो गया। विनम्रता बहुत शक्तिशाली है, विशेषकर एक परिवार में। उसके पत्र में आगे लिखा है, मैं अधिक विनम्र होने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि हम इस साल मंदिर में मोहरबंद होने के लिए कार्य कर रहे हैं। 6 साल बाद उसने मुझे एक अन्य पत्र लिखा। हाल ही में मेरे पति को हमारे वार्ड का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीवन में बहुत से संबंधों और परिस्थितियों में हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो हम से मतभेद रखते हैं। जहां जरूरी हो हमारी तरफ से इन मतभेदों को इनकार नहीं करना चाहिए या छोड़ा जाना नहीं चाहिए, लेकिन मसीह के अनुयायी को उनके साथ शांति से रहना चाहिए जो उनके मूल्यों में सहभागी नहीं होते या उन शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते जिन पर ये आधारित होते हैं। पिता की उद्धार की योजना, जिसे हम भविष्यवक्ता के प्रकटीकरण द्वारा जानते हैं, हमें नाश्वर अवस्था में रखती है जहां हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसमें शामिल है भिन्न संस्कृति और धर्म के अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, जैसा उसने हमसे प्रेम रखा था, जैसा मार्मन की पुस्तक के भविष्यवक्ता ने सिखाया था। हमें परमेश्वर से और सभी मनुष्यों से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। चारों तरफ से अशांति के वातावरण में जीने की कठिन समय में हमारे उद्धारकर्ता की आज्ञा, जैसा उसने हमसे प्रेम रखा था, हम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखें। शायद हमारे लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसे समझें और अपने सभी संबंधों और कामकाज में इसके अनुसार जीने का प्रयास करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।